एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे अहम ग्रंथ समूह पर बात करने वाले हैं जिसकी गूंज आप कह सकते हैं हजारों सालों से सुनाई दे रही है, तोरा।
हाँ, जिसे अक्सर लोग मूसा की 5 किताबें या पेंटाट्यूक भी कहते हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ यहूदी धर्म की बुनियादी नहीं है बल्कि इसने दुनिया भर में नैतिकता, कानून और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की समझ को मतलब बहुत गहराई से प्रभावित किया है।
सही बात है, ये वाकई एक आधारशिला जैसा है। हमारी आज की जो बातचीत है वो दो स्रोत सारांशों पर आधारित है। तोरा न्याय और आध्यात्मिकता का मूलभूत मार्गदर्शन और दूसरा है तोरात नियम और करार।
हाँ, ये दोनों हमें इस काफी जटिल और प्रभावशाली ग्रंथ को अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगे।
तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई आज के जमाने में इस हजारों साल पुरानी किताब की बात करना क्यों जरूरी है, क्या रेलेवेंस है इसका?
देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। तोरा सिर्फ इतिहास या कह लें धार्मिक रस्मों का कोई दस्तावेज भर नहीं है, ये उन बुनियादी सवालों से जूझता है जो आज भी हमारे सामने हैं।
जैसे कि
एक सार्थक जीवन कैसे जिएं, न्याय का असली मतलब क्या है, एक अच्छा समाज कैसे बनता है, हमारे अपने कर्तव्य क्या हैं और समुदाय के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये वो सवाल हैं जो मतलब हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे, है ना?
बिल्कुल सही बात है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे जिएं, कैसे एक बेहतर दुनिया बनाएं। तो चलिए इस गहरे ज्ञान के सागर में उतरते हैं, देखते हैं ये हमें क्या सिखा सकता है। शुरुआत करते हैं इसके लेखक से। मैंने सुना है कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है।
हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो यही माना जाता है कि तोरा ईश्वर ने सीधे मूसा को दिया था सिनाय पर्वत पर।
अच्छा।
मूसा की भूमिका एक तरह से दिव्य संदेशवाहक की थी। उन्होंने ईश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाई। तो इस नजरिए से देखें तो मूसा ही इसके लेखक हैं। ईश्वर के साथ उनका रिश्ता भी बहुत अनोखा बताया गया है, जैसे वो उनसे आमने सामने बात करते थे।
लेकिन जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो उसे थोड़ा अलग तरह से देखते हैं, है ना? वो एक वृत्तचित्र परिकल्पना या कुछ ऐसी बात करते हैं।
बिल्कुल, कई विद्वानों का मानना है कि तोरा एक अकेली आवाज नहीं है बल्कि कई आवाजों का संगम है जो कई सदियों के दौरान धीरे धीरे एक तरह से बुना गया है।
अच्छा, मतलब कई लोगों का योगदान है इसमें।
हाँ, उनका कहना है कि इसमें अलग अलग समय और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखकों या कह ले परंपराओं के निशान मिलते हैं। जैसे कुछ हिस्से हैं जहां ईश्वर को ज्यादा व्यक्तिगत और मानवीय रूप में लिखाया गया है, उन्हें वो याहविस्ट श्रोत कहते हैं। तो कुछ में ईश्वर ज्यादा दूरस्थ और मतलब अलौकिक लगते हैं, वो एलोहिस्ट कहलाते हैं। फिर पुजारी वर्ग के लेखक हैं जिनका योगदान रस्मों और पवित्रता पर जोर देता है। और फिर व्यवस्था विवरणीय लेखक हैं जो वाचा यानी करार और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो ये अलग अलग लेखक वाली बात इसे कमजोर नहीं करती होगी फिर, बल्कि शायद और समृद्ध बनाती होगी, जैसे अलग अलग धागों से बुनी हुई है खूबसूरत चादर।
हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। ये जो अलग अलग दृष्टिकोण है, ये प्राचीन इसराइल के अनुभवों को, उनके संघर्षों को, ईश्वर के साथ उनकी बदलती समझ को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय ने अपने इतिहास और अपने विश्वास को समझा और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। शायद ये विविधता ही इसकी स्थायी अपील का एक कारण है।
ये तो हुई लेखक की बात। अब अगर हम किताब के सार पर आए, मतलब ये 5 पुस्तकें आखिर कहना क्या चाहती हैं, इनका सेंट्रल आइडिया क्या है?
देखिए, इसका जो मूल तत्व है वो है ईश्वर और इसराइल के लोगों के बीच एक खास रिश्ता जिसे वाचा या करार कहते हैं।
ब्रिट।
हाँ, और ये सिर्फ कोई लीगल अग्रीमेंट नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है जिसमें दोनों तरफ से वादे हैं, जिम्मेदारियां हैं। तोरा इसी वाचा के इर्द गिर्द घूमता है। ये बताता है कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए, कैसे एक पवित्र, न्यायपूर्ण और सार्थक जीवन जिया जाए। ये आप कह सकते हैं जिंदगी जीने का एक नक्शा है।
और ये नक्शा हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाता है ना? सृष्टि की शुरुआत से लेकर कहां तक?
हाँ, कहानी शुरू होती है दुनिया और इंसान की रचना से, बिल्कुल शुरू से। फिर हम शुरुआती इंसानी पीढ़ियों से मिलते हैं, आदम, हव्वा, नूह। फिर कहानी अब्राहम पर केंद्रित होती है जिन्हें ईश्वर एक महान राष्ट्र बनाने का वादा करते हैं।
हाँ, अब्राहम का जिक्र तो बहुत आता है।
बिल्कुल, ये यात्रा उनके वंशजों इसहाक, याकूब, जिन्हें बाद में इसराइल नाम मिला, और फिर उनके 12 बेटों के साथ आगे बढ़ती है। यूसुफ की कहानी हमें मिस्र ले जाती है, जहां ये परिवार गुलामी में फंस जाता है।
और फिर आता है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, मूसा का नेतृत्व और मिस्र से आजादी, जिसे निर्गमन या एक्सोदस कहते हैं। ये शायद सबसे जानी मानी कहानी है इसकी।
हाँ बिल्कुल।
इसके बाद सीनाई पर्वत पर कानून मिलना, जिसमें वो 10 आज्ञाएं भी शामिल हैं, और फिर रेगिस्तान में वो 40 साल का मुश्किल सफर। अंत में मूसा प्रतिज्ञात भूमि को देखकर दुनिया से विदा लेते हैं, पर उसमें जा नहीं पाते। ये पूरी यात्रा अपने आप में एक रूपक जैसी लगती है।
बिल्कुल, ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौहरा नहीं है, ये यात्रा हमें सृष्टि, परिवार, कानून, न्याय, पूजा, समुदाय, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि व्यक्तिगत आज़ादी और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे गहरे विषयों से रूबरू कराती है।
इसका लक्ष्य सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि ईश्वर के साथ साझेदारी में इंसान अपनी उच्चतम संभावनाओं तक कैसे पहुँच सकता है। ये एक न्यायपूर्ण समाज का सपना है, एक खाका है।
चलिए अब इन 5 पुस्तकों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, लेकिन सिर्फ कहानी सुनाने के बजाय ये देखते हैं कि हर किताब का खास योगदान या मुख्य संदेश क्या है।
शुरुआत उत्पत्ति से करते हैं, जिसका मतलब है प्रारंभ में, बेरेशीत। तो उत्पत्ति, जैसा नाम से ही जाहिर है, हमें शुरुआत में ले जाती है। दुनिया कैसे बनी, इंसान का क्या मकसद है, ईश्वर की छवि में बनाया जाना, ये हमें मानवीय स्वभाव की जो जटिलताएं हैं उनसे भी मिलवाती है।
हाँ।
कि सबके लिए मंच तैयार करती है।
बिल्कुल। और दूसरी किताब निर्गमन, शेमोत, जिसका मतलब है नाम, ये मुक्ति और पहचान की कहानी है। यहाँ केंद्र में है गुलामी से आजादी, ये दिखाती है कि ईश्वर उत्पीड़ितों के साथ है।
हाँ, ये बहुत पावरफुल मैसेज है।
हाँ, मिस्र पर वो गृहपत्तियां और लाल सागर का पार होना सिर्फ चमत्कार नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति और उनके अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। फिर सिनाई पर्वत पर कानून का मिलना, खासकर वो 10 आज्ञाएं, ये दिखाता है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी आती है।
अच्छा।
और यहीं ईश्वर अपना वो रहस्यमयी नाम YHWH, मैं जो हूँ सो हूँ, प्रकट करते हैं, जो उनकी सक्रिय और रहस्यमयी उपस्थिति को दर्शाता है। ये किताब एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है, जिसे आज़ादी और कानून ने एक साथ बांधा है।
फिर आती है तीसरी किताब, लेवी व्यवस्था, वैकरा और उसने पुकारा। ये अक्सर थोड़ी सूखी लगती है, क्योंकि इसमें नियम और रस्में बहुत हैं, लेकिन इसका जो मूल संदेश है वो है पवित्रता, कैदुशा।
पवित्रता किस मायने में?
मतलब ये पूछती है कि ईश्वर के साथ वाचा में बंधे लोग रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिए। इसमें बलिदान के नियम हैं, शुद्धता के नियम हैं, जैसे कशरुत, खान पान के नियम, त्योहारों का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं है। इसका दिल है पवित्रता संहिता, अध्याय 17 से 27, जो नैतिक पवित्रता पर जोर देती है।
अच्छा।
और यही हमें वो मशहूर आज्ञा मिलती है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये दिखाती है कि ईश्वर से रिश्ता और इंसानों से रिश्ता, ये दोनों जुड़े हुए हैं। पवित्रता सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए।
ये दिलचस्प है। फिर चौथी किताब गिनती, बामिदबार, जंगल में, ये नाम ही काफी कुछ बता देता है।
हाँ।
ये एक कठिन सफर का, मैं कहूंगी, यथार्थवादी चित्रण है। सिनाई से निकलने के बाद प्रतिज्ञात भूमि तक की यात्रा आसान नहीं थी। लोग शिकायत करते हैं, विद्रोह करते हैं, जैसे वो कोराह का विद्रोह, डरते हैं, 12 जासूसों वाली कहानी।
इंसानी फितरत।
बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि विश्वास की राह में मुश्किलें आती हैं, समुदाय में तनाव होता है, वो 40 साल भटकना एक सजा भी है और शायद सीखने का एक मौका भी। यहाँ तक कि मूसा भी गलती करते हैं और उन्हें भूमि में प्रवेश नहीं मिलता।
हाँ, ये बात चौंकाती है।
ये हमें सिखाती है कि वादे तक पहुँचना कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव और संघर्ष शामिल है। ये नई पीढ़ी के तैयार होने की भी कहानी है।
और फिर 5वीं और आखिरी किताब, व्यवस्था विवरण, डिवारिम शब्द, ये एक तरह से मूसा के विदाई भाषणों का संग्रह है। वो अपनी मृत्यु से पहले लोगों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं।
अच्छा, जैसे एक रीकैप और आगे के लिए गाइडेंस।
हाँ, कुछ वैसा ही। यहाँ कानून को फिर से दोहराया गया है, लेकिन अब उसमें ज्यादा करुणा और सामाजिक न्याय पर जोर है, जैसे विधवाओं, अनाथों, परदेशियों की देखभाल का आग्रह। यहाँ एकेश्वरवाद का सबसे मजबूत नारा है शेमा यसरेल, सुनो हे इसराइल, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये किताब स्मृति, ज़िकारॉन और शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर देती है कि अतीत को याद रखो ताकि भविष्य बेहतर बना सको। ये वाचा के प्रति निष्ठा और आने वाली पीढ़ियों को इसे सिखाने की जिम्मेदारी पर बल देती है।
तो इन पांचों किताबों से गुजरते हुए कुछ केंद्रीय विषय, कुछ थीम्स बार बार उभर के आते हैं। पहला और सबसे बुनियादी तो मुझे लगता है एकेश्वरवाद ही है, एक ईश्वर की अवधारणा।
हाँ, जो नैतिक है, जिसने सृष्टि रची है और जो इतिहास में सक्रिय है।
बिल्कुल, और ये उस समय की जो बहुदेववादी दुनिया थी उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था।
सही।
दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वाचा, स्पिनेज, जिसकी हमने पहले भी बात की। ये ईश्वर और इंसान के बीच एक दो तरफा रिश्ता है। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, बल्कि वफादारी, भरोसे और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है। ये विचार कि ईश्वर इंसानों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत गहरा है।
तीसरा और आज के लिए भी बेहद प्रासंगिक विषय है न्याय, मिश्पत, और जिसे हम कह सकते हैं धार्मिकता या धर्मार्थता, चदका।
हाँ, चदका। तोरा में कानून को ईश्वर का तोहफा माना गया है और इसमें कमजोरों की सुरक्षा पर बहुत जोर है। सदका का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि सही काम करना, समाज में संतुलन और न्याय लाना है। ये आज भी हमें याद दिलाता है कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और भारत जैसे देश में जहां असमानता एक बड़ी चुनौती है, ये विचार तो बहुत ही मायने रखता है।
बिल्कुल। चौथा थीम है पवित्रता, केदुषा। इसका मतलब है ईश्वर के लिए अलग होना, खास होना, ना सिर्फ रस्मों रिवाज में बल्कि रोजमर्रा के आचरण में भी।
मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें अपने कामों में, अपने रिश्तों में, यहाँ तक कि खाने पीने में भी एक ऊंचा नैतिक स्तर बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
अच्छा।
और पांचवा है स्मृति, ज़िकारॉन, याद रखना। तोरा बार बार कहता है याद रखो।
क्या याद रखो?
याद रखो कि तुम मिस्र में गुलाम थे, ताकि तुम परदेसियों के साथ हमदर्दी रखो। याद रखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, ताकि तुम वफादार रहो। अपनी कहानी को, अपने इतिहास को याद रखना और उसे अगली पीढ़ी को सौंपना, ये किसी भी समुदाय की पहचान और उसकी निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो है। हमारी अपनी परंपराओं में भी स्मृति और कहानियों का कितना महत्व है।
बिल्कुल।
इन किताबों में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसे कोट्स हैं जो हजारों साल बाद भी मतलब दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे यादगार विचार हैं। हाँ, कई है। जैसे शुरुआत ही देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति एक एक। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बयान नहीं है, बल्कि एक घोषणा है कि ये दुनिया यूं ही नहीं बन गई, इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक व्यवस्था है।
और वो शेमा जिसका हमने जिक्र किया था, सुन हे इसराइल, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, व्यवस्था विवरण 6:4। ये सिर्फ ईश्वर की एकता की घोषणा नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण का आह्वान है, एक तरह से टोटल कमिटमेंट।
बिल्कुल। और ईश्वर का वो रहस्यमय नाम भी बहुत गहरा है, मैं जो हूं सो हूं, निर्गमन 3:14, अहया अशेर अहया।
हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए?
ये शायद उनकी स्वतंत्रता, उनकी जीवंत उपस्थिति और उनकी अपरिभाषित प्रकृति को दिखाता है। वो किसी परिभाषा में बंधे नहीं है, वो बस हैं।
और नैतिकता का वो सुनहरा नियम जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, लेवी व्यवस्था 19:18। ये सहानुभूति और आपसी सम्मान को मानवीय रिश्तों का आधार बनाता है। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है।
एक और जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, न्याय। न्याय ही का पीछा करना, व्यवस्था विवरण 16:20। सदक सदक, यहाँ न्याय शब्द को दोहराया गया है।
हाँ, दो बार।
क्यों?
इसका मतलब है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसे सक्रिय रूप से खोजना होगा, उसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव परसूट है, एक सतत प्रयास।
ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या इनके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ठोस अनुप्रयोग हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस?
बिल्कुल हो सकते हैं। पहला तो नैतिक ढांचा ही है, कमजोरों की देखभाल करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, दान देना, ये सब आज भी उतने ही जरूरी हैं। और वो पड़ोसी से प्रेम का सिद्धांत, ये हमें रिश्तों में ज्यादा हमदर्दी और सम्मान रखना सिखा सकता है, चाहे वो घर में हो, दोस्तों के साथ हो या काम की जगह पर।
और वो शब्बात या साप्ताहिक विश्राम का जो विचार है वो भी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत काम का लगता है। हाँ बिल्कुल, आज की 24/7 वाली दुनिया में नियमित रूप से काम से हटकर आराम करना, परिवार या समुदाय के साथ समय बिताना या सिर्फ शांत रहना, यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ काम करने वाली मशीनें नहीं हैं।
सही का। और कानून के शासन का विचार भी यहीं से मजबूत होता है ना?
हाँ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये एक निष्पक्ष समाज की नींव है जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।
और वो स्मृति वाली बात भी, वो भी लागू होती है। अपने परिवार की, अपने समुदाय की कहानियों को जानना, अपनी जड़ों को समझना हमें एक तरह की ताकत देता है।
हाँ, और अतीत की गलतियों से सीखना और सफलताओं से प्रेरणा लेना, ये हमें बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाता है। और ये भी याद रखना कि तोरा का जो पात्र हैं वो भी कोई परफेक्ट नहीं थे। उनकी कमजोरियों और उनके संघर्षों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी कैसे मिलता है?
हाँ, कुछ हद तक। इंसान को पृथ्वी का मालिक नहीं बल्कि एक तरह से रखवाला या प्रबंधक माना गया है। जैसे वो सबाथिकल वर्ष का नियम था जिसमें जमीन को आराम देने की बात थी, वो हमें आज संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के बारे में सोचने की प्रेरणा दे सकता है।
और हाँ, एक और बात, अजनबियों या परदेशियों के प्रति व्यवहार।
बिल्कुल, तोरा बार बार याद दिलाता है कि इसराइली खुद मिस्र में परदेशी थे, इसलिए उन्हें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। ये आज के समय में जब हम माइग्रेशन, शरणार्थियों की बात करते हैं या समाज में जो भी हाशिए पर है उनके प्रति हमारे रवैये के लिए एक मजबूत नैतिक आधार देता है।
तो इस सारी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद ये कि तोरा आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग अलग नहीं देखता है। पूजा पाठ, रस्में अपनी जगह हैं, लेकिन असली धर्म या आध्यात्मिकता इस बात में झलकती है कि हम दुनिया में कैसे जीते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, न्याय के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। ये वाकई में जीवन जीने का एक समग्र तरीका सुझाता है।
हाँ, और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही वो है कानून को देखने का नजरिया। अक्सर हम कानून को सिर्फ बंदिशों के तौर पर देखते हैं, रोक टोक, लेकिन तोरा उसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा ढांचा जो न सिर्फ समाज को व्यवस्थित रखता है बल्कि इंसानी गरिमा को बढ़ाता है और हमें अपनी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने में मदद करता है। यह स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधने की एक बहुत खूबसूरत कोशिश है।
और अंत में ये विचार कि इंसान गलतियां कर सकता है, भटक सकता है, जिसे वो तशुवा कहते हैं, पश्चाताप, लेकिन हमेशा वापसी का, सुधार का रास्ता खुला है, ये उम्मीद और माफी का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। तोरा सिर्फ एक प्राचीन दस्तावेज नहीं है बल्कि एक जीवित संवाद है जो आज भी हमें चुनौती देता है, प्रेरित करता है और एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने की राह दिखाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए ओकुतो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।